पृष्ठ संख्या 749 सुमेरु एक। सुमेरु एक पौराणिक पर्वत है जो पर्वतों का राजा माना जाता है। प्रसिद्धि है कि वह सोने का बना हुआ है। हिंदी सूफी कवियों ने इस चिर परिचित कवि समय का उपयोग किया है। उदाहरण क शेर शाही सरी पूज न को समुद्र सुमेर घट ही नित दो। शेर शाह की समानता कोई नहीं कर सकता है। समुद्र और सुमेरु भी जो रत्न राशि तथा सोना यह उनसे दान देने के लिए लेता रहा है उसके कारण नित्य क्षीण होते जा रहे हैं। ख गरुआ तप गरुआ अवतारा काबिल हिंद भयो एक बारा उत्तर हेम गिरी लही तीन परवाना दक्षिण सेत बंध लही आना चार। यह भी प्रसिद्धि है कि स्वाति बूंद सुमेरु पर्वत पर गिरती है तो अमृत बन जाती है। चला गया। यथा परही मेरु पर अमृत होई पांच। फारसी साहित्य में इसी प्रकार का एक पर्वत है जिसका नाम है कोह काफ। कवि समय के अनुसार इस पर परियां रहती हैं। एक कई कवि सुमेरु के स्थान पर मेरु का भी व्यवहार करते हैं, जैसे सिरजसी धरती और अकासु सिरजसी मेरु मंदर कबिलासु। मौलाना दाऊद दलमई कृत चंदायन संपादक परमेश्वरी लाल गुप्त दिल्ली सन 1964 पृष्ठ 81। दो पद्मावत संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1963 ईस्वी पृष्ठ 13। तीन सुमेरु पर्वत। चार मंजन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 11। पांच जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 136। यह भी प्रसिद्धि पृष्ठ संख्या 750 है कि वह जुमर्रद पन्ना रत्नों से बना हुआ है और पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। एक अतः काफ ता काफ काफ से लेकर काफ तक का अर्थ समस्त विश्व लेते हैं। उदाहरण देखिए कुशादी नाफा ए तब ए मरा नाफ मुअत्तर कुंजे मुश्कम काफ ता काफ। दो मौलाना जामी कहते हैं कि ए खुदा तूने मेरी कल्पना शक्ति के नाफे मृग नाभि को खोल दिया, अब काफ ता काफ समस्त संसार को मेरी कस्तूरी के द्वारा सुगंधित कर दे। कवि की अभिलाषा है कि दुनिया भर में उसका काव्य फैल जाए और लोग उसकी कद्र जानें। सेमर का फूल तथा शुक। सेमर का फूल संसार की निस्सारता का प्रतीक माना गया है। प्रसिद्धि है कि शुक को सेमर के भुए में फल की आशा होती है। वह उसमें फल की प्राप्ति की अभिलाषा से चोंच मारता है परंतु निपट निराश होता है। हिंदी सूफी कवियों ने इस कवि प्रशस्ति का बड़ी मार्मिकता से उपयोग किया है। उदाहरण क रानी आई धाय के पासा सुआ भुआ सेवर कै आसा। तीन ख अरे मलिच विश्वासी देवा कित मैं आई कीन तोरी सेवा आपनी नाव चढ़े जो देई सो तौ पार उतारे खेई। एक सैयद आबिद अली आबिद तलमिहाते इकबाल हिस्सा ए फारसी लाहौर सन 1959 ईस्वी पृष्ठ 547। दो मौलाना जामी यूसुफ जुलेखा नवल किशोर प्रेस लखनऊ सन 1896 ईस्वी पृष्ठ 5। तीन जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 36 पृष्ठ संख्या 751। सुफल लागि पग टेकेऊं तोरा सुआ क सेवर पू मा तो मोरा। एक ग सुवटा सेम्बर बेगी तजु बहुत बिगूचे पंखी एही पापिनी कह सो रवे जाके हिय न अंखी। दो घ तिरिया पेम जिय जें लायो सेवर सुवा जैस फल पायो। तीन सोलह श्रृंगार। कवि समय के अनुसार श्रृंगारों की संख्या 16 है। केशव दास कृत कवि प्रिया में इन श्रृंगारों के नाम इस प्रकार हैं। प्रथम सकल सूची मज्जन अमल बास जावक सुदेश केश पासनी सुधारिबो अंगराज भूषण विविध मुख बास राग कज्जल कलित लोल लोचन निहारिबो बोलनी हंसनी चित चातुरी चलनी चारु पल पल प्रति पतिव्रत परिवारिबो केशोदास सबिलास करहु कंवरी राधे यही विधि सोरह सिंगारन सिंगारिबो। चार व्याख्या। एक सकल सूची शौच दंत धावन उपटन आदि करना। दो मज्जन स्नान। तीन अमलबास स्वच्छ वस्त्र धारण करना। चार जावक पैरों में महावर भराना। पाँच केश पाश सुधारिबो बाल संवारना। अंगराग अंगों में विविध रंगों से कुछ चिन्ह बनाना। इसके अंतर्गत पाँच श्रृंगार हैं। छः मांग में सिंदूर भरना। सात भाल पर और आठ गाल और चिबुक पर तिल बनाना। नौ उरस्थल पर केसर मलना। दस हाथों में मेहंदी लगाना। भूषण जेवर ये दो प्रकार के होते हैं। एक जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 87। दो मंजन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 31। तीन वही पृष्ठ 134। चार लाला भगवान दीन प्रिया प्रकाश अर्थात कवि प्रिया सटीक काशी संवत 1982 विक्रम पृष्ठ 55 पृष्ठ संख्या 752। ग्यारह पुष्प भूषण। बारह सुवर्ण भूषण। तेरह मुखवास एला लवंगादि चर्वण मुख राग मुंह को रंगना ये दो प्रकार से होता है। चौदह दांतों को मिस्सी से रंगना। पंद्रह होठों को तांबूल से रंगना। सोलह नेत्रों में कज्जल देना। यहाँ यह लिखना समीचीन प्रतीत होता है कि बोलनी चलनी हंसनी हेरनी इत्यादि श्रृंगार नहीं हैं, ये हाव हैं जो श्रृंगार को चोखा कर देते हैं। इससे अधिक और भी अनेक प्रकार के श्रृंगार हो सकते हैं तो भी कवि लोग नियमबद्ध होकर इन 16 का वर्णन ही करते हैं। एक कवि जायसी पद्मावती को संबोधित करते हुए कहते हैं, 12 अभरन 16 सिंगारा तो ही सौह नहीं ससि उजियारा। ससि सकलंक रहे नहीं पूजा तू निकलंक न सरी कोई दूजा। दो कवि मंजन मधुमालती के विषय में लिखते हैं, 9 सत साजे बाला निभरम सोव सुख सेज चेत परिहरेव कुंवर चित देखी हरेव बुधि तेज। तीन फारसी साहित्य में भी श्रृंगारों की संख्या 16 मानी जाती है। चार अमीर खुसरो लिखते हैं, हफत नुह खेश बयारा स्तंद। पाँच अर्थात उन्होंने अपने आप को 9 तथा 7 16 श्रृंगारों से सुसज्जित किया। एक लाला भगवान दीन प्रिया प्रकाश अर्थात कवि प्रिया सटीक काशी संवत 1982 विक्रम पृष्ठ 55-56। दो जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 147। तीन मंजन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 60। चार देखिए हफत व नूह 16 श्रृंगार फारसी साहित्य की काव्य रूढ़ी। पाँच अमीर खुसरो मतला उन्नवार नवल किशोर प्रेस लखनऊ सन 1934 ईस्वी पृष्ठ 11 पृष्ठ संख्या 753। आभरणों की संख्या 12 मानी जाती है इसलिए 12 आभूषणों एक तथा 16 श्रृंगारों के लिए 12-16 का मुहावरा चल पड़ा, जैसे अस 12-16 धनी साजे। दो कवि उस्मान भी चित्रावली में लिखते हैं, 12-16 साज बनाए। तीन स्वाति बिंदु प्रसिद्धि है कि स्वाति बिंदु सीप में मोती सुमेरु पर्वत पर अमृत नाग के मुख में विष कदली में कर्पूर पृथ्वी पर कचूर चार तथा समुद्र में खारा जल बन जाता है। उदाहरण क त न सुना जो बरिस सेवाती एक एक बूंद अमिय कह जाता जैसे संग रे होय गुन सोई सांप के मुख रे परत विख होई वह बूंद सीप गज मोती निर्मल होय अधिक तेहि ज्योति वह कपूर चवादे होई अधिक बास बिरसे सब कोई। पाँच शुरू करें। ख जोगिन बहुते छंद ओराही बूंद सेवाती ही जैस पराही परे समुद्र खार जल ओही परे सीप मुह मोती होही। एक नूपुर किंकिणी वलय अंगूठी कंकण अंगद हार कंठश्री बेसर खूंट या बिरिया टीका तथा सीस फूल। शुक्ल जी ने ठीक ही लिखा है, जायसी ने 16 श्रृंगार और 12 आभरण की बातें लेकर एक गड़बड़ कर दिया है। जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 130 टिप्पणी 6। दो वही पृष्ठ 132। तीन कवि उस्मान चित्रावली काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी 403-2। चार काली हल्दी। 5 कुतुबन कृत मृगावती, संपादक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र प्रयाग, शक 1885, पृष्ठ 148, पृष्ठ संख्या 754। परह पुहुमी पर होई कचूरु, 1 परह केदली मह होई कपूरु, परह मेरु पर अमृत होई, परह नाग मुख बिख होई सोई। 2 फारसी साहित्य में भी कवि समय के अनुसार अब्रे बहार, 3 बहार के बादल अथवा नैसान, 4 मास के मेघ के जलबिंदु, सीप में मोती तथा सर्प में विष बन जाते हैं। उदाहरण क, समस्त सृष्टि का कर्ता परम तत्व ही है, इस भाव को प्रकट करने के लिए कवि उर्फी उक्त कवि समय का प्रयोग करते हुए कहते हैं, जे अब्रो आफ्ताब अंदेशात कोतह बबद जारु, दूर अस गन जीना ए दरिया, ओ लल अस जैबे का बीनी। 5 अर्थात बादल और सूरज तक मेरे ख्याल की पहुंच नहीं है, तभी तो तू यह समझता है कि कीमती मोती समुद्र के खजाने से और लल पद्मराग कान के भीतर से पैदा होते हैं। ख, हजरत यूसुफ जब 2 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया, वे प्रायः रोते रहते थे, यह देखकर उनके पिता हजरत याकूब ने उनके पालन पोषण का कार्य अपनी बहन को सौंप दिया। 1 कचूर करचूर काली हल्दी। 2 पद्मावत, संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद, सन 1963 ईस्वी, पृष्ठ 263। 3 ईरान में प्रायः 21 मार्च से 21 जून तक बहार का मौसम होता है, जो अत्यधिक सुहावना होता है, इसमें पुष्प आदि पूरे यौवन पर होते हैं। 4 शामी मास, जो अंग्रेजी मास अप्रैल के मुताबिक आता है, इस मास में कुछ कुछ वर्षा हो जाया करती है। 5 कवि उर्फी कसायदे उर्फी नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1928 ईस्वी, पृष्ठ 77। मौलाना जामी इस भाव को उक्त कवि प्रसिद्धि के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, पृष्ठ संख्या 755। पिदर चू दीद हाले गौहरे खेश, सदफ करदश किनारे खाहरे खेश। 1 अर्थात पिता ने अपने मोती पुत्र का यह हाल देखा कि वह प्रायः नीर बहाता रहता है, तो उसने अपनी भगिनी की गोद को उसके लिए सीपी बना दिया। हंस, प्रसिद्धि है कि हंस मुक्ता चुग चुग कर अपना पेट भरते हैं, जैसे हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, साकेत चिरगांव, 2005, पृष्ठ 218। हिंदी सूफी काव्य में से कुछ उदाहरण क, उलथही सीप मोती उतराही, चुगही हंस अकेली कराही। 2 ख, ए जगसूर कहो तुम पाहा, और 5 नग चितौर माहा, एक हंस है पंखी अमोला, मोती चुने पदार्थ बोला। 3 हनुमान, प्रसिद्धि है कि सिंघल के मार्ग में भारत और लंका के बीच हनुमान प्रहरी बनकर आज तक आवाज देते हैं, ताकि राक्षस लोग इधर न आ सकें। मलिक मोहम्मद जायसी इसकी ओर संकेत करते हुए कहते हैं, भयउ पयान चला पुनि राजा, सिंगी नाद जोगिन कर बाजा, कहे नी आज कुछ थोर पयाना, काली पयान दूरी है जाना, ओ ही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल सोई, है आगे पर्वत कै बाटा, विषम पहार अगम सोठी गाटा, बिच बिच नदी खोह अनारा, ठावही ठाव बैठ बट पारा, हनुवंत केर सुनब पुनिहाका, दहुन जो पार होई को थाका। 4 1 मौलाना जामी यूसुफ जुलेखा नवल किशोर प्रेस, सन 1896 ईस्वी, पृष्ठ 44। 2 जैसी ग्रंथावली पद्मावत, पृष्ठ 12। 3 वही, पृष्ठ 216। मलिक मोहम्मद जैसी इसकी ओर संकेत करते हुए कहते हैं, 4 जैसी ग्रंथावली पद्मावत, पृष्ठ 57, पृष्ठ संख्या 756। तथा हनुवंत वीर लंका जय जारी, पर्वत उह आहा रखवारी, बैठी वहां होई लंका ताका, छटे मास दे उठी हाका। 1 हरिश्चंद्र, सूर्यवंश के 28वें 2 राजा, जो अपनी सत्यवादिता एवं प्रणपालिता के लिए भारतीय साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। हिंदी सूफी कवियों ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यप्रियता की चर्चा अपने ग्रंथ रत्नों में की है। उदाहरण क, कहाँ सो हरिश्चंद्र है सतवती, कत रावण कत राम, कत कौरव कत पांडव अबला, बल ना थिर छाह न घाम। 3 ख तू राजा जस विक्रम आदि तू हरिचंद बैन सतवादी। चार ग नौ खंड पृथ्वी भयो अनंदु धर्म दुधिष्ठिर सत हरिचंदु। पाँच घ सत हरिचंद दान बलि करा धर्म दुधिष्ठिर कलि अवतारा। छ एक वही पृष्ठ 88। दो श्री भोलानाथ तिवारी हिंदी साहित्य की अंतर कथाएं इलाहाबाद सन 1953 ईस्वी पृष्ठ 173। तीन कुतुबन कृतमृगावती संपादक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र प्रयाग शक 1885 पृष्ठ 198। चार जैसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 68। यह अर्धाली राजा रत्न सेन की प्रशंसा में है। पाँच मंजन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 11। यह अर्धाली तत्कालीन बादशाह सलीम शाह की प्रशंसा में है। छः वही पृष्ठ 12। यह अर्धाली भी सलीम शाह की प्रशंसा में है। हारिल हारिल पक्षी के संबंध में दो कवि प्रसिद्धियों का उल्लेख किया जाता है। पृष्ठ संख्या 557। प्रथम वह कभी भूमि पर नहीं उतरता। द्वितीय वह प्रायः चंगुल में कोई लकड़ी या तिनका लिए रहता है। एक हारिल के जमीन पर पांव न रखने की बात सच हो या गलत, परंतु इसमें संदेह नहीं कि इस देश में शताब्दियों से अवधारणा बनी रही है और कवियों ने उसकी इस मनोवृत्ति की, उसके इस प्रण पालन की भूरी भूरी प्रशंसा की है, उसे आदर्श माना है। हिंदी सूफी कवि मंझन ने प्रथम कवि समय को अपनाते हुए लिखा है कि वैसे तो हारिल भूमि का स्पर्श तक नहीं करता, परंतु प्रेमा के विरह ताप का प्रभाव इतना व्यापक है कि हारिल भी उससे अछूता नहीं रहा, वह अपनी प्रकृति के विपरीत भूमि पर आ गया है। हारिल दुख हारी भूई आवा। दो अर्थात हारिल पक्षी दुख से हार कर थकित होकर भूमि पर आ गया। एक वृक्ष ही हारिल पक्षियों का निवास स्थल है और क्रीड़ा क्षेत्र भी। वे शायद ही कभी वृक्ष से नीचे उतरते हों। टहनियों को बड़े जोर से अपने चंगुल के सहारे पकड़कर सिर नीचे पैर ऊपर करके ये फल खाते हैं तथा इस प्रकार न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर जबरदस्त आघात कर डालते हैं। छोटी टहनियों को चंगुलों से ये कुछ ऐसे जोर से पकड़ते हैं कि उनका कोमल हिस्सा टूटकर इनके चंगुलों में जा फंसता है। इस जनश्रुति का कि हारिल कभी जमीन पर नहीं उतरते और यदि कभी पानी पीने के लिए उतरते हैं तो पांवों में लकड़ी का टुकड़ा लेकर, यही आधार प्रतीत होता है। निसंदेह हारिल को वृक्ष बड़ा प्यारा है और शायद ही किसी ने उसे जमीन पर अथवा किसी मकान की छत पर या और कहीं बैठा पाया हो। वृक्ष की टहनी ही मानो उसके जीवन का आधार हो। श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह भारत के पक्षी दिल्ली सन 1958 ईस्वी पृष्ठ 83। दो मंझन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 187 पृष्ठ संख्या 758। निष्कर्ष हमने ऊपर जो कुछ अध्ययन विश्लेषण प्रस्तुत किया है उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कठिन न होगा कि हिंदी सूफी कवियों ने फारसी एवं भारतीय साहित्य में प्रचलित अनेक काव्य रूढ़ियों का सुंदर प्रयोग किया है। वे कवि प्रसिद्धियाँ हिंदी सूफी काव्य में स्वतः स्वाभाविक रूप में आई हैं, कहीं भी ऊपर से लादी हुई नहीं लगती। अब यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि हिंदी सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं को भारतीय एवं फारसी साहित्य की काव्य रूढ़ियों का गंगा जमुनी संगम बना दिया है।